ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। सरकार एक देश एक चुनाव विधेयक व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने पर सहमत हो गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया था कि विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए ताकि इस पर विस्तृत विचार विमर्श हो सके। श्री शाह का यह बयान कल लोकसभा में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर शोर शराबे के बीच आया। लोकसभा में ये विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने इस पर आपत्ति व्यक्त की। श्री मेघवाल ने इस आपत्ति को राजनीति से प्रेरित बताया। इन दोनों विधेयकों का उद्देश्य देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की तरह प्रत्येक भाजपा शासित राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। संविधान को स्वीकृति के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में चर्चा का समापन करते हुए श्री शाह ने देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने के लिए कांग्रेस की तीखी आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री अमित शाह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आरोपों के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र में चुनाव परिणामों को लेकर शिकायत की उन लोगों ने ही झारखंड में जीत का जश्न मनाया, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने विधानसभा चुनाव जीता। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अगले वर्ष से केवल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करेगी, भर्ती परीक्षाएं नहीं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि त्रुटि मुक्त परीक्षा संचालित करने और जवाबदेही तय करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि नीट यूजी की विस्तृत रूपरेखा अगले 2-3 हफ्तों में घोषित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद के निकट बोलारम स्थित राष्ट्रपति निलयम में अनेक सुविधाओं का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति शीतकालीन प्रवास के लिए कल शाम निलयम पहुंची। नई सुविधाओं से आगंतुकों के लिए वहां एक नया भवन और स्मारक चिन्ह विक्रय केंद्र शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लेंगे। इस बातचीत का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की तैनाती के कारण पिछले 4 वर्ष से बाधित द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना है। श्री डोभाल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री वांग यी के साथ 23वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता करेंगे। बातचीत में पूर्वी लद्दाख से सेना हटाने और गश्ती से संबंधित 21 अक्टूबर की संधि के अनुसार द्विपक्षीय संबंध फिर मजबूत करने पर व्यापक विचार विमर्श की आशा है। भारतीय नागरिक अगले वर्ष जनवरी से श्रीलंका को वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे। भारत उन 39 देशों में शामिल है जिनके लिए श्रीलंका ने वीजा मुक्त यात्रा की व्यवस्था की है। भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजय हेरात ने कल नई दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित संवाद में ये घोषणा की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज विशाखापत्तनम में नौसेना गोदी में भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक पोत INS निर्देशक के जलावतरण समारोह में भाग लेंगे। INS निर्देशक में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री प्रयुक्त हुई है। नीति आयोग ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के सहयोग से 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया। कल मुंबई में संपन्न इस कार्यशाला में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी ने कहा कि 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक भारत की यात्रा वैश्विक और घरेलू के दौर में अविश्वसनीय रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में 2रा स्थान प्राप्त किया है। अब ये वर्ल्ड रैंकिंग में विश्व का 202वां और एशिया का 23वां और भारत का 2रा विश्वविद्यालय बन गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एशियाई विकास बैंक ADB से राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया है। ADB के निदेशक मियो ओका ने सहयोग का आश्वासन दिया है। ब्रिस्बेन में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टूर्नामेंट में भारत के साथ 3रे क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी 7 विकेट पर 89 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत ने चायकाल तक बिना कोई विकेट गवाए 8 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण खेल रुका हुआ है। समाचार समाप्त हुए।